Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayana, 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 Narayana. ब्रह्मविद आपनोति परम। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली का ये जनरल एनंसिएशन है, सूत्र वाक्य है। क्या सिद्ध करना है इसमें, क्या बताना है कि ब्रह्मवेत्ता ही ब्रह्म को प्राप्त करता है और केवल जानने मात्र से ही वो प्राप्त हो जाता है। वो जानना है विलक्षण। घड़े के कपड़े को जैसे जानते हैं, ऐसे कोई ब्रह्म वस्तु नहीं है संसार की कि उसको जान लेंगे तो हम ब्रह्म हो जाएंगे। अपना ही जो स्वरूप है, जो किसी भी कारण से इस समय अज्ञात हो रहा है, उसको जान लेना, उसकी ज्ञातता उत्पन्न करना, जहां भूल है वहीं उसकी ज्ञातता उत्पन्न हो जाए तो वो ज्ञात हो जाती है। प्राप्ति की प्राप्ति है, पहले से ही प्राप्त है, उसको दोबारा भूल सुधार करके जान लेना होता है। अब जो लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते, वो कहते हैं ये तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, पुरुषार्थ का विषय वो नहीं होता है जो पहले से ही प्राप्त होता है। पुरुषार्थ का विषय वो होता है जो पहले अप्राप्त होता है और फिर उसके लिए प्रयत्न करके उसे प्राप्त किया जाता है। तो बोले कि परिच्छिन्न वस्तुओं के बारे में तो ऐसा ही है, जो अपने से भिन्न वस्तुएं हैं वो तो अप्राप्त हैं किसी काल में और फिर उसके लिए पुरुषार्थ करके उनको प्राप्त किया जाता है। अच्छा, प्राप्त करना क्या है? मान लो हमारे पास घड़ा नहीं है तो क्या पुरुषार्थ करेंगे हम? तो बोले पैसे से खरीद लाएंगे, किसी से उधार मांग लाएंगे, अपना ही घड़ा बना लेंगे। मतलब घड़ा तो घड़े का प्राप्त करना क्या हुआ? उसे पकड़े बैठे रहोगे, बोले ये हमको प्राप्त हो गया, चिपटाए रहोगे कि ये हमको प्राप्त हो गया। ये घड़ा मेरा है, अब ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ये जो ज्ञान है ना, यही इसी को प्राप्ति बोलते हैं संसार में। और छोड़ के भी जाते हैं नारायण, संसार की वस्तुएं तो जो भी मिलती हैं वो बिछोड़ना उनमें अनिवार्य है, सिर्फ काल की ही प्रतीक्षा होती है। कोई न दो प्राणी एक साथ पैदा हुए हैं, न दो वस्तुएं एक साथ पैदा होती हैं, सबकी आयु जाति भोग सबका अलग अलग है। फिर भी सारा पुरुषार्थ इसी में है कि इस चीज को प्राप्त करो, इस चीज को प्राप्त करो। ये प्राप्त करने वाला कौन है? ये जब तक जिज्ञासा का उदय नहीं होता है तब तक ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती है। कौन है वो जो इसको प्राप्त करना चाहता है? तो बोले ये शरीर वाला है। ठीक है, शरीर वाला है, लेकिन है कौन? ये जड़ है, शरीर है कि चेतन है कि जड़ और चेतन का मिला जुला है? तो जैसे घड़े की प्राप्ति मतलब घड़े के स्वामित्व का ज्ञान, जैसे घड़े की प्राप्ति कहलाती है, ऐसे ही ब्रह्म के स्वरूप रूप होने का ज्ञान इसको ब्रह्म प्राप्ति बोलते हैं। घड़े का ज्ञान तो एक दफे होकर काल में मिट जाता है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान यदि हो जाए तो फिर ये एक बार होने के बाद मिटता नहीं है, क्योंकि मिटेगा तो भी मैं ही रहूंगा, नहीं मिटेगा तो भी मैं ही रहूंगा, और मैं निश्चित हो गया कि ये ब्रह्म ही है तो इसलिए उसमें कभी वियोग नहीं होता है। इसी को प्राप्ति की प्राप्ति बोलते हैं। तो यहां से ये ब्रह्मानंद वल्ली का प्रारंभ किया। दूसरी बात ये आती है कि ज्ञान से जो प्राप्त होता है उसमें तो कुछ मजा नहीं आता है। कोई चीज पहले अब प्राप्त हो, जीभ पे आवे तो खाने का स्वाद आवे, सुनने को हो तो कान का स्वाद आवे, प्रत्येक इंद्रिय का जो विषय होगा उसी में आनंद आता है। अब जो सबको जानने वाला है वो तो किसी इंद्रिय का विषय ही नहीं होगा, तो उसमें आनंद कैसे आएगा? तो बोले आनंद रूप है, आनंद उसका स्वरूप है। अगर ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा ब्रह्म हूं तो मैं आनंद रूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, इसलिए मुझे अब किसी अन्य ज्ञान की चिंता, अन्य आनंद की चिंता नहीं है। ये जो व्याकुलता होती है कि हमें ये चीज मिल जाए, ये व्याकुलता अज्ञान के कारण होती है। चीज मिली हुई नहीं है ये ज्ञान, इसी को अज्ञान बोलते हैं। ब्रह्म के संबंध से इसको अज्ञान बोलते हैं और संसार के विषयों के संबंध से इसे पूर्व ज्ञान बोलते हैं। तो पूर्व ज्ञान जो संसार का है वो ब्रह्म विद्या की दृष्टि से अज्ञान है, और अपने स्वरूप को प्राप्त होते हुए भी उसको ना जानना ये ब्रह्म विद्या में अज्ञान है। यानी अज्ञान के दो विभाग कर लेने चाहिए, संसार की विषयों का अज्ञान और अपने स्वरूपभूत ब्रह्मत्व का अज्ञान। तो संसार के विषयों का अज्ञान भले ही बना रहे, लेकिन आनंद का विषय वो तब होता है जबकि हमारी जो व्याकुलता हो रही थी उसके लिए वो समाप्त होती है। ऐसा वेदांत के ग्रंथों में लिखते हैं कि जैसे मान लो हमको रसगुल्ला खाने का मन हुआ और इतनी इच्छा जागृत हुई कि मिलना चाहिए मिलना चाहिए, अशांति हो गई मन में। अब किसी ने लाके रसगुल्ला दे दिया हमको, तो हुआ क्या? वो जो खलबली मच रही थी ना अशांति की, वो अशांति दूर हो गई। उस अशांति दूर होने को ही हम सुख समझते हैं। और जिसको डायबिटीज है और जबरदस्त डायबिटीज है, उसको आप चाहे जितने रसगुल्ले दे दो नारायण, उसे ये तो ज्ञान होगा कि रसगुल्ला मिल गया, लेकिन उसमें सुख नहीं होगा, क्योंकि सुख बुद्धि जो है वो महत्व बुद्धि के ऊपर आधारित है। अब किसका कितना महत्व है, बस यही इसी में व्यक्ति व्यक्ति का फर्क होता है। तो बोले ये ब्रह्म जो है यदि ये आनंद रूप है तो इसका तो कभी आनंद आएगा ही नहीं, भोग्य होगा ही नहीं। तो कहा कि यो वेद निहतम गुहायाम परमे व्योमन स क्या सोष्णते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति। जो विपश्चित है मतलब जो ब्रह्म विद्या में पारंगत बुद्धि है, जो वस्तु तत्व को जानता है, वो इसी बुद्धि में छुपे हुए ब्रह्म को जानता है। यो वेद जो जानता है निहतम गुहायाम इसी बुद्धि रूपी गुफा में छिपे हुए ब्रह्म को जो जानता है, स अश्नुते सर्वान कामान वो अपनी सब कामनाओं के को भोग कर लेता है। मतलब कामनाओं का फल क्या है? वो अशांति की निवृत्ति। अब आपको अनुभव हो या ना हो, जैसे संसार की वस्तुओं के अभाव में व्याकुलता होती है, ऐसे ही परमात्मा के अज्ञान से भी व्याकुलता होती है। इतने बरस हो गए, इतना साधन भजन किया, इतना सत्संग किया, परमात्मा हमें नहीं मिलता, नहीं मिल रहा, तो वो जो व्याकुलता होती है असल में वही दुख है। और वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके मन में ये दुख उत्पन्न होता है। ये हर किसी के मन में दुख उत्पन्न नहीं होता है, और जिसके मन में दुख उत्पन्न होता है उसको भगवान मिल भी जाते हैं। तो कहते हैं कि कामनाओं का में जो सुख है वो महत्व बुद्धि के कारण है। अगर वो महत्व बुद्धि शास्त्र के द्वारा अपने स्वरूप में आ जाए तो वही सुख प्राप्त होगा जो कि संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने से होता है। अशांति का मिटना है, एक ऐसी चीज मिल गई जो हमेशा आपके साथ रहती है, अब दोबारा अशांति नहीं हो सकती उसकी। तो सारी कामनाओं का जो फल है, जो भोग्य फल है, कामनाओं का भोग्य फल क्या है? सुख। तो वो एक साथ उनको वो भोग लेता है। एक साथ मतलब एक एक करके उसकी कामना पूरी होती जाती है, ये नहीं। जैसे आनंद का खजाना मिल जाए तो फिर एक एक रुपए का सुख उसे नहीं भोगना पड़ता है। इस प्रकार से अब ये भोक्ता कौन है, ये प्रश्न उठता है। यही मूल विषय है इस ब्रह्मानंद वल्ली का। कौन है ये भोक्ता? कौन भोगना चाहता है सुख? कौन जानना चाहता है ब्रह्म? और कौन करना चाहता है पुरुषार्थ? ये तीन ही प्रश्न है। पुरुषार्थ कौन करना चाहता है? ब्रह्म को कौन जानना चाहता है? ब्रह्म के आनंद को कौन भोगना चाहता है? क्या ये तीन व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति है? मैं ही आनंद चाहता हूं, मैं ही उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करूंगा, और उसके लिए जो पुरुषार्थ करना होगा वो ही मैं करूंगा। अर्थात भोक्ता ही कर्ता बन जाता, ज्ञाता बन जाता है, ज्ञाता ही कर्ता बन जाता है, और फिर कर्ता के लिए जो सामग्री है वो भगवान ने दे ही रखी है। प्राणमय कोष जो है ये क्रिया की सामग्री दे रखी है, और करने का जो साधन है स्थूल शरीर अन्नमय कोष वो आपको दे रखा है। इच्छा भी आप में उदय हो गई तो मनोमय कोष भी हो गया, लेकिन इच्छा करके और कुछ करो मत उसके लिए, तो ये कर्ता रूप जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो भक्ति का साधन हो, ज्ञान का साधन हो, कर्म का साधन हो, कुछ ना कुछ तो उसके लिए कर्म करना ही पड़ता है। ये कर्म है, जैसे सत्संग अटेंड करना है ये कर्म है। चल के आते हो, यहां बैठ के कानों से सुनते हो, बुद्धि पर जोर डालते हो, फिर घर में जाके कुछ थोड़ा बहुत विचार भी करते हो, तो ये सब साधन जो है करने वाला कौन है? तो बोले ये इच्छा के मूल में जो बैठा हुआ है वो है मनोमय पुरुष। कल आपको बताया था, तो मनोमय पुरुष के मूल में कौन बैठा है? तो इसको बोलते हैं विज्ञानमय पुरुष। यही आज का विषय है। विज्ञान माने जानाति इच्छति करोति, जानता है फिर इच्छा करता है फिर करता है। तो इच्छा करने वाला तो हो गया मनोमय पुरुष, और करने वाला हो गया प्राणमय पुरुष या अन्नमय पुरुष समझ लो। अन्नमय प्राणमय करने वाला हो गया और इच्छा करने वाला हो गया मनोमय पुरुष। अब ये बिना ज्ञान के इच्छा कैसे उदय हो गई? बिना ज्ञान के तो इच्छा उदय हो नहीं सकती। तो चाहे शास्त्र से सुनकर के परमात्मा की ललक लगे, चाहे महात्मा से सुनकर के परमात्मा की ललक लगे, चाहे जन्म जन्मांतरों से सुने हुए संस्कारों से परमात्मा की ललक लगे, लगती है ये सुनकर के ही। अब सुनकर के एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, बात आई गई हो गई, तो उसका फिर संस्कार नहीं जमता। और अगर बीच में रुक गई तो वो संस्कार भी जमता है और वही क्रिया में परिणत होता है। तो इस मनोमय कोष के भीतर एक और पुरुष है जिसको बोलते हैं विज्ञान में पुरुष। वो महाराष्ट्र सुनाते थे कि एक बार राधा रानी रोने लगी। सखी ने पूछा क्यों रोती हो? बोले मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं तो व्यभिचार नहीं हो गई। तो बोले कैसे व्यभिचार नहीं हो गई? बोले किसी की वंशी सुनी तो उसको प्यार करने लगी, और किसी की शक्ल सूरत देखी तो उसको प्यार करने लगी, किसी का सुंदर हाव भाव कटाक्ष प्रेम देखा तो उसको प्यार करने लगी। तो ये तीन तीन पुरुष के साथ मेरा प्यार हो गया तो मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं एक निष्ठ नहीं रही। तो सखी ने कहा कि ये जो तीन तुम्हारे हैं पुरुष, जिनकी वंशी सुनी, जिनकी शक्ल देखी, जिनका प्रेम आलाप सुना, ये एक ही व्यक्ति है, ये तीन व्यक्ति नहीं है। तो ये अन्न में पुरुष कोई दूसरा हो, और प्राण में पुरुष कोई दूसरा हो, और मनो में कोई दूसरा हो, विज्ञान में कोई दूसरा हो, आनंद में कोई दूसरा हो, ऐसा नहीं है। एक ही पुरुष जो है अलग अलग स्थान पर बैठकर अलग अलग मालूम सा पड़ता है एक ही व्यक्ति है। तो कल आपको मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष का अंतर भी बताया था। मनोमय कोष में श्रुत ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है, लेकिन सिर्फ तदाकार वृत्ति है। जैसे घट शब्द है और उसका एक अर्थ है, तो घट कहते ही आपके भीतर से भी घट आवाज आई, जैसे इको होती है, कुएं की आवाज बोलते हैं, कुएं में मुंह करके जो बोलोगे वही शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। तो बाहर किसी ने कुछ घट शब्द बोला और आपकी वृत्ति भी घट घट इस रूप से बन गई, तो ये तो है मनोमय कोष। और वो जो घट शब्द का अर्थ है, पानी भरने वाला गोल मटोल मिट्टी से बना हुआ उपयोगिता वाला, और ये जो सारी चीजों को मिलाकर के जो घट ज्ञान है, उस घट ज्ञान के आकार में यदि बुद्धि परिणत होती है तो उसी को बोलते हैं विज्ञानमय कोश। ये एक फैकल्टी भगवान ने ऐसी दी है बुद्धि की, ये सब अपने शक्तियां हैं शरीर में, पंचभूतों की शक्ति अन्नमय कोष में प्रकट होती है, प्राण की शक्ति प्राणमय कोष में प्रकट होती है, मन की शक्ति मनोमय कोष में प्रकट होती है, और बुद्धि की शक्ति विज्ञानमय कोष में प्रकट होती है। तो क्या प्रकट होती है? तो बोले जानाति, ये जानने की जो शक्ति है ये विज्ञानमय कोष में प्रकट होती है। अब या तो जान करके और उसी में डूब जाओ, और या तो जान करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। संसार की वस्तुओं का ज्ञान होगा तो उनको अलग से प्राप्त करने की चेष्टा होगी, और आत्मा ब्रह्म का ज्ञान होगा तो मैं यही हूं इस भाव में डूबने की इच्छा होगी, डूब जाएंगे। लेकिन है ये दोनों विज्ञान में कोष है। एक आदमी वेद पढ़ता है और निष्कर्ष निकालता है कि हमको कर्मकांड करना चाहिए, एक आदमी वेद पढ़ता है और निष्कर्ष निकालता है कि हमको उपासना करनी चाहिए, तीसरा आदमी कहता है कि नहीं, हमको शांति से बैठना चाहिए, वेद में लिखा है, चौथा आदमी कहता है कि नहीं, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब ये चारों ज्ञान जो है ये वेद से ही तो निकल रहे हैं ना, तो वेद में चार ज्ञान है कि एक ज्ञान है? बोले ज्ञान तो एक ही है, लेकिन वो अधिकारी भेद से बुद्धि में वो प्रकट होते हैं। जब बुद्धि स्थूल होती है तो कर्म की ही बात ज्यादा पकड़ती है, थोड़ी पवित्र होती है तो उपासना की पकड़ती है, थोड़ी अंतर्मुख होती है तो शांति की पकड़ती है, और प्रबुद्ध होती है तो नारायण तत्व ज्ञान की बात पकड़ती है। एक महात्मा ऐसा समझाते थे, बोले एक माई भोजन बांटती थी तो एक महात्मा आए, नारायण हरि बोले, तो महात्मा बोले क्या बनाया है? बोले महाराज आज तो दाल बनी है, रोटी बनी है। बोले बस कुछ मीठा मीठा नहीं बनाया? कि नहीं, कुछ नहीं बनाया। ठीक है, मैं अभी आता हूं, एक दूसरे घर से मांग के आता हूं। चले गए, थोड़ी देर में आके उसको भी ले गए। दूसरे महात्मा आए, बोले नारायण हरि क्या बनाया है? बोले महाराज आज तो जो है दाल रोटी भी है, चावल भी है, ये भी है, वो भी है, आज तो हमारी इच्छा ये है कि आप यहीं बैठ कर खा लें। बोले अच्छा ला खिला दे। अब खाया, बोले इसमें तो नमक ज्यादा है, इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें मीठा ज्यादा है, ये पके नहीं है, ये कच्चे हैं। तो खिलाने वाली बोली कि महाराज लगता है आज भूख नहीं है आपको, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ खुचर निकाल रहे हैं। बोले हाँ, वो दूसरी जगह भी तो खा के आ रहा हूं ना। अब तीसरा आदमी आया अगले दिन, उसने कहा कुछ है? बोले महाराज अभी तो रसोई बनी नहीं है। तो बोले रात की रखी हो कि ना? रात की भी कुछ नहीं है। बोले परसों की रखी हो? बोले क्यों, ऐसी क्या बात है कि अगर मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा? तो जो हो सो दे दो। बोले सूखे टिक्कड़ पड़े हैं? तो बोले ला वो ही दे दे। तो सूखे टिक्कड़ खाया, पानी पिया और प्रसन्न होकर चला गया। तो बोले बस ऐसे ही है साधक लोगों की। बोले सत्संग सुनी आते हैं और फिर जब बुढ़े होएंगे तब फिर ये सुना हुआ काम आएगा। हमारे एक टीचर थे तो उनको भी शौक था, इधर हमको भी शौक था, तो मिलते थे। तो एक दिन वो उठे और निकाल करके अलमारी में से एक बड़ी फाइल निकाल कर लाए। तो बोले देखो, मैं तो जब तुम्हारे बराबर का था तो मैं योग वासिष्ठ पढ़ता था, और ये मैंने उसके नोट्स तैयार किए थे, वो जो फाइल थी वो योग वासिष्ठ के नोट्स थे। तो तैयार तो इसलिए की थी कि फिर कभी इनको देखेंगे। अब बोले इस बात को 50 साल हो गए, फाइल ज्यों की त्यों रखी है और अब इच्छा भी नहीं होती है इसको पढ़ने की। तो ये सत्संग सुनकर के और फिर काम आएगा, एक तो इस प्रकार के लोग होते हैं। तो ये कौन है कि भूख भी नहीं है आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन संग्रह करने की इच्छा है। तो बोले हम दूसरे घर से मांग लावें, आज फलाना सत्संग बड़ा अच्छा हो रहा है, पहले वहां सुनिया में, ये तो रूखी सूखी बातें हैं नारायण। दूसरे सत्संगी इस प्रकार के हैं कि वो सत्संग में तो बैठेंगे मगर उनकी दृष्टि इसी पर रहती है कि कहां गलती बोला इसने, वक्ता ने गलती कहां बोला। अभी दो दिन पहले एक सज्जन यहीं से उठ के गए, बोले मैं हिंदी पढ़ा हूं, मैं संस्कृत भी थोड़ी सी जानता हूं, और जब मेरी ही समझ में नहीं आती आपकी बात तो आप ये काहे लिए व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो। तो मैंने कहा आप मुझे ये बताओ मैं क्या करूं, बोलना बंद कर दूं या मैं अपना स्टाइल चेंज करूं, क्या करूं, आप क्या कहना चाहते हो। नहीं मैं तो कहना चाहता था बस, चले गए फिर आए नहीं है वो। तो ये दूसरे प्रकार के हैं, उन्हें मतलब खुचरी निकालनी है, ग्रहण कुछ नहीं करना। और एक तीसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो कहते हैं बोले ठीक है, इसमें देखो इन्होंने ये बात तो ठीक कही, उसी समय उसको ग्रहण कर लेते हैं।